آج کل
प्रिय मित्रों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में भी हम फिलिस्तीन के मुद्दों पर और डील ऑफ सेंचुरी की शैतानी चाल के एक अन्य आयाम पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और हसन अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
पिछले कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि बराक ओबामा के शासनकाल में भी फिलिस्तीनी ज़ायोनी विवाद एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में अमेरिका की विदेश नीति में यथावत बाकी रहा। बराक ओबामा के पूर्ववर्तियों ने भी फिलिस्तीनियों और ज़ायोनियों के बीच तथा कथित शांति के बहुत अधिक प्रयास किए, लेकिन इससे न केवल उनके बीच मतभेदों में कमी नहीं हुई बल्कि मतभेद और भी गहरे होते चले गए।
फिलिस्तीनी ज़ायोनी विवाद के गहराने के बाद अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके मंत्रिमंडल ने ज़ायोनी बस्तियों के निर्माण का विरोध शुरू कर दिया, किंतु ज़ायोनी प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने बस्तियों के निर्माण को रोकने के अपने वादे के पालन से इनकार कर दिया।
यहाँ पर हमें अमरीका और ज़ायोनी शासन के बीच विदित रूप से मतभेद गहराते नजर आ रहे थे और बराक ओबामा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए विदेश मंत्रालय में अपने महत्वपूर्ण भाषण में सन 1967 से पहले की सीमाओं के अनुसार फिलिस्तीनी देश के गठन के समर्थन की घोषणा कर दी। अभी उनके बयान को जारी हुए अधिक समय नहीं बीता था कि नेतन्याहू ने एक बयान जारी करके इसराइल के प्रति अमरीकी सरकार के वचनों को याद दिलाया और उक्त सीमाओं के अनुसार वार्ता आरंभ करने के लिए ओबामा की नीतियों को रद्द कर दिया।
अमेरिका और इसराइल के बीच विदित रूप से गहराते मतभेद पर मरहम रखने के लिए ओबामा ने आखिरकार इसराइल का दौरा किया और उसके बाद सारी अतीत की बातों को भुला दिया गया और दो पुराने दोस्त एक बार फिर एक हो गए।
फिलिस्तीन के इतने अधिक समर्थन का दावा करने वाले बराक ओबामा ने अपने दृष्टिकोण से पलटी मारते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में फिलिस्तीन की सदस्यता के विषय का विरोध करते हुए इसराइल के प्रति अपनी वफादारी का एक बार फिर सबूत पेश किया।
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति काल के अंतिम दो वर्षों में फिलिस्तीनियों और ज़ायोनियों के बीच संकट को समाप्त करने और दोनों पक्षों को वार्ता की मेज पर लाने का बहुत प्रयास किया और उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे को ज़ायोनी शासन के साथ अरब देशों के संबंधों के संकट के रूप में पेश किया। इसलिए उन्होंने ज़ायोनी शासन के साथ अरब देशों के संबंधों को सामान्य बनाने के सुझाव पेश किए, जो वाशिंगटन की नज़र में ये प्रक्रिया ज़ायोनी फिलिस्तीनी शांति के परिणाम के रूप में सामने आएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो योजना पेश की थी उसमें पूर्वी बैतुल मुकद्दस के कुछ क्षेत्रों को अवैध अधिकृत फिलिस्तीन में शामिल करना और बैतुल मुकद्दस शहर में बाकी इस्लामी स्थलों पर अरबों को अधिकार देना शामिल था। यद्यपि बराक ओबामा ने इस एकपक्षीय योजना को लागू करने के लिए अरब देशों के प्रमुखों से वार्ताएं भी कीं, लेकिन ज़ायोनियों द्वारा बस्तियों के निर्माण को जारी रखने से ओबामा और नेतन्याहू की ये योजना बुरी तरह से विफल हो गई।
यहाँ पर एक बात बताना आवश्यक है कि यदि हम ज़ायोनी फिलिस्तीनी विवाद और इस विवाद की मुख्य वजह पर नज़र डालते हैं तो हमारे लिए सब स्पष्ट हो जाता है। इतिहास पर नज़र डालने से पता चलता है कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन और उनके सलाहकार जॉर्ज मार्शल के बीच इसराइल के गठन पर काफ़ी मतभेद था। बात यहीं पर नहीं रुकी और इसराइल का गठन हो गया।
इस कार्रवाई से समस्त यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश का रास्ता खुल जाएगा। ये कार्रवाई यहूदियों को अधिकार और विशिष्टताएं देती है और विश्व समुदाय में सदस्यता का अधिकार भी प्रदान करती है। मैं अपने स्वाभाविक और ऐतिहासिक अधिकारों के आधार पर इसराइली यहूदियों की धरती पर यहूदी सरकार के गठन की घोषणा करता हूँ।
वास्तव में ये कहा जा सकता है कि ज़ायोनी शासन के विस्तारवाद और इस शासन को इस बात का विश्वास कि अमेरिका उसका हमेशा समर्थन करता रहेगा, इन्हीं कारणों से अतीत की योजनाएं और सुझाव भी विफल रहे हैं।
पश्चिमी एशिया के मामलों के ईरानी टीकाकार मासूद असदुल्लाही का कहना है कि फिलिस्तीनियों के संबंध में ज़ायोनी शासन की अतिक्रमणकारी नीतियां और योजनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती और इसका मुख्य कारण अमेरिका का व्यापक समर्थन और अरब सरकारों का धीरे धीरे एक एक कदम पीछे हटना है। या दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि इसराइल अमेरिका के निरंतर समर्थन और अरब देशों के पीछे हटने की वजह से दुस्साहसी हो गया है और उसने फिलिस्तीन में अपनी विस्तारवादी नीतियों को बढ़ाया और सांठगांठ करने वाले अरब देश जनता का समर्थन न होने की वजह से फिलिस्तीन में इसराइल की शत्रुतापूर्ण नीतियों का मुकाबला करने का साहस नहीं जुटा पाए।
बराक ओबामा ने अपने 8 साल के राष्ट्रपति काल में फिलिस्तीन मुद्दे के समाधान के लिए प्रयासों का दिखावा तो बहुत किया, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल के दौरान ज़ायोनी शासन के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया और इस लिहाज से रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। अलबत्ता बराक ओबामा ने अपने राष्ट्रपति काल के अंतिम दिनों में ज़ायोनी बस्तियों के निर्माण को रोकने के बारे में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव क्रमांक 2234 पर होने वाले मतदान में भाग नहीं लिया।
बहुत से टीकाकारों ने ओबामा की इस कार्रवाई को राजनीतिक ड्रामा करार दिया क्योंकि उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल के अंतिम तेल अविव की जमकर वित्तीय, राजनीतिक व सामाजिक सहायता की। ओबामा व्हाइट हाउस से रुखसत हो गए और वर्ष 2016 में अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में नया राष्ट्रपति मिला, जिससे वॉशिंगटन द्वारा ज़ायोनी शासन के समर्थन का क्रम जारी रहा, बल्कि यूं कहा जाए कि इस समर्थन ने नया आयाम अपना लिया।
अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं था जिसने ज़ायोनी शासन और उसके गठन का समर्थन न किया हो। जी हाँ, समर्थन तो सबने किया, लेकिन फर्क यह है कि किसी ने बहुत ज्यादा और किसी ने बहुत कम। इसराइल के गठन के बाद और जॉर्ज मार्शल के विरोध के बावजूद अमरीका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित करते हुए लिखा कि
This government has been informed that a Jewish state has been proclaimed in Palestine.
मेरी सरकार को इस बात की सूचना मिल गई है कि फिलिस्तीन में एक यहूदी सरकार ने अपने अस्तित्व की घोषणा की है और उसके द्वारा और उससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा हमसे आधिकारिक रूप से उसे स्वीकार करने की अपील भी की गई है। अमरीकी सरकार अंतरिम सरकार को अनाधिकारिक रूप से इसराइल की नई सरकार के रूप में स्वीकार करती है।
मुसलमानों के मुकाबले में ट्रंप प्रशासन की इस्लाम विरोधी नीतियों के कारण वॉशिंगटन प्रशासन और जेसन ग्रीनबॉल्ट और जेड कुशनर जैसे ट्रंप की सलाहकार टीम ने अपने हितों को साधते हुए फिलिस्तीन के मुद्दे के बारे में कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपना लिया। दूसरी ओर वास्तव में यदि देखा जाए तो आक्रामक और हमलावर बर्ताव के बजाय अमरीका और ज़ायोनी शासन ने बहुत ही मिलाजुला रवैया अपनाया ताकि किसी को भनक तक न लगे कि ये काम पूर्ण समन्वय से किया जा रहा है। इसका उदाहरण यह है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए अपने दूतावास को तेल अविव से बैतुल मुकद्दस स्थानांतरित कर दिया। अमरीका के इस कदम पर इस्लामी जगत और दुनिया से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
फिलिस्तीन के एक सक्रिय कार्यकर्ता अदनान हुसैनी फिलिस्तीनियों और मुसलमानों के विरुद्ध ट्रंप की नीतियों के बारे में कहते हैं कि ट्रंप ने अपना दूतावास तेल अविव से बैतुल मुकद्दस स्थानांतरित करके खुलकर और अभूतपूर्व ढंग से इस्लामी और अरब जगत के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया है। ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں اب تک 42 راشٹرپتی گزرے ہیں لیکن کسی نے بھی اس پرکار کا فیصلہ نہیں لیا۔ اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ کا یہ فیصلہ ان کے راجنیتک اگیان، اناڑی پن اور مورکھتا کا چنہ ہے۔
ٹرمپ پرشاسن میں زائنی لابی کے پربھاؤ تتا زائونزم آندولن کی اور ان کی پارٹی، ان کے پریوار اور ان کے نکٹ سمبندیوں کے رجحان کے اترکت آرتھک سمبندوں اور گہرے رننیتک تتا آئیڈیالوجک نربھرتا نے ٹرمپ میں زائونی شاسن کے پرتی سمرتھن کی جوتی جگا دی، اور یہی کارن ہے کہ فلسطینی زائونی وواد کو حل کرنا فلسطین اور اسلامی جگت کے ہتوں کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے ویاپارک اور آرتھک ہتوں کو پراپت کرنے اور اویدھ زائونی شاسن کو باقی رکھنے کی پریدھی میں ہے۔
جیسا کہ سبھی کو پتا ہے کہ فلسطینی پرشاسن پچھلے کئی برسوں سے سانٹ گانٹ وارتا کے شڈینتر میں آ کر کئی بار ٹرمپ پرشاسن کے اپمان جنک رویوں کو سہن کر چکا ہے۔ حماس کی راجنیتک شاخہ کے پرمخ اسماعیل ہنیہ نے غزہ کی جنتا کے مدھ اپنے سمبودھن میں کہا کہ ہمیں یہ سوچنا ملی ہے کہ امریکہ کی سرکار فلسطینی وارتاکاروں اور ادھیکاریوں سے کیسا برتاؤ کرتی ہے۔ واسطو میں اسرائیلی اچھائیں امریکی بیانوں اور بھاشا کی پریدھی میں فلسطینی وارتاکاروں کے حوالے کی جاتی ہیں۔ حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ امریکہ نے فلسطینی پرشاسن کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں اور شہیدوں کے پریجنوں کی سہایتا نہ کرے۔
زائونی شاسن اور فلسطینیوں کے بیچ شروع سے چلی آ رہی سانٹ گانٹ وارتا پرکریا پر پرتکریا ویکت کرتے ہوئے اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا کہتے ہیں،
یکی از چیزهایی که امروز مطرح می شود در این که قضیه فلسطین را به دست فراموشی بسپارد۔
آج کل ایک مہتوپورن مدہ جو ہمارے سامنے ہے وہ فلسطینی مدے کو بھلا دینے کی سازش ہے۔ وہ اس مدے کو اسلامی جگت کے منچ سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ وہ تتھا کتھت شانتی وارتا کر کے فلسطین کے وشے کو بھلا دینا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ وشواس گھات ہے۔ جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ اور وشواس گھات کر رہے ہیں۔
از همه خیانت هایی که تا امروز به فلسطین شده بیشتر و سهمگین‌تر و بدتر۔
شروع تا کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ ہمیں انومتی دیجیے۔